मसीही जिंदगी में सबसे अहम नुक्ता या खुदावंद खुदा की सबसे अहम हदायत यही है कि हम उसकी आवाज़ को सुनें और उसकी ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारें। चाहे हम मूसा से बात कर लें तो वो भी हमें यही राज बताएगा कि खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ को सुनो और उस पर अमल करो। चाहे हम यशवा से बात कर लें, जब हमारा हौसला टूटा हो तो यशवा भी हमें यही कहेगा कि खुदावंद फरमाता है कि शरीयत की ये किताब तुम्हारे मुंह से ना हटे बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। यर्मिया नबी भी यही कहता है, अगर हम उससे बात करें कि खुदावंद को पुकार तो वो तुझे जवाब देगा और तुझ पर बड़ी बड़ी गहरी बातें जाहिर करेगा। खुदावंद यीशु मसीह से बातचीत की जाए, उसकी सुनी जाए, तो खुदावंद यीशु मसीह भी यही कहते हैं, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। और यहां तक खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। सो पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक अगर हम सफर करें, मूसा से, एलिया से, आदम से, नूह से, हनूक से, जिनसे भी बातचीत करें, बातचीत करने से मुराद हरगिज नहीं कह रहा कि आप हनूक को पुकारना शुरू कर दें कि मेरी रहनुमाई कर, आप नूह को पुकारना शुरू कर दें कि मेरी रहनुमाई कर, हरगिज से ये मतलब मत लें। यानी कि उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें, तो उनकी जिंदगी का निचोड़ इस बात पर हमें मिलेगा कि खुदावंद की सुनो, खुदावंद की सुनो वो क्या फरमाता है। इसीलिए आज हम सब नए अहदनामा में से गलतियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका 5 बाप उसकी 22वीं आयत से पढ़ेंगे। पालूस रसूल कलीसिया को हदायत करते हुए, हुक्म देते हुए, नसीहत करते हुए, तरबियत करते हुए कहता है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं। और जो मसीह यसु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल रूहुल कुद्दस की हदायत, रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में चलने की क्या करता है, तालीम देता है कि अगर हम रूह के मुआफिक चलेंगे तो उसका फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, मेहरबानी, हलीमी, परहेजगारी, हर तरह की माफी, हर तरह का सब्र, हर तरह की खुदावन खुदा की वो तमाम लियाकतें जाहिर होंगी। और अगर हम जिस्म के माफिक चलेंगे तो जिस्म के काम जाहिर किए गए हैं, यानी कि मोहब्बत के मुतबादल नफरत, खुशी के मुतबादल उदासी, इत्मान के मुतबादल क्या होगा, बेचैनी, मेहरबानी की बजाय क्या होगा, मेहरबानी नहीं होगी, तुंद मजाजी होगी, ऐसा रवैया होगा जो खाक साराना रवैया नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज हम ईमानदार जो हैं, बहुत दफा ईमानदार जो रूहुल कुद्दस के खिलाफ गुनाह करते हैं, 3 है जिनका बाइबल मुकद्दस में दर्ज है। आए पहले आज इस कहानी पर गौर करें कि जो ईमानदार रूहुल कुद्दस की आवाज को नहीं सुनते वो बहुत दफा रूहुल कुद्दस के खिलाफ क्या करते हैं, गुनाह करते हैं। हम बहुत दफा एक दूसरे के खिलाफ गुनाह करते हैं, बहुत दफा छोटा बड़े के खिलाफ गुनाह करता है, बीवी खावंद के खिलाफ गुनाह करती है, लेकिन आज हम देखेंगे कि रूहुल कुद्दस के खिलाफ जब गुनाह किया जाता है तो उससे तरक्की नहीं होती। इमाल की किताब उसका 5 बाप, इमाल की किताब उसका 5 बाप और यहाँ पर हम इस कहानी में से सीखेंगे हनन्या और सफीरा की कहानी। यहाँ पर उन्होंने खुदा के बंदों से झूठ बोला, रूहुल कुद्दस से झूठ बोला और अपनी मनमानी की। नया अहदनामा ईमाल की किताब उसका 5 बाप। और एक शख्स हनन्या नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव पर रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हनन्या, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बात सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया और तकरीबन तीन घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी उसके इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तो क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदा के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख तेरे शोहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शोहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। इस कहानी में हम खुदा के रसूलों को, खामद और बीवी को देखते हैं कि उन्होंने अपनी जायदाद का हिस्सा खुदा के लिए लहदा किया था कि हम ये हिस्सा खुदा को देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? खुदा के रूहुल कुद्दस से क्या बोला? झूठ बोला। और यहां पर खुदा का बंदा पतरस उनसे तकरीबन 5 सवाल करता है, क्यों, कब, क्यों, क्यों, क्यों तुमने ये किया? सो हम ईमानदार होते हुए इस कहानी में से ये सबक सीखेंगे आज के दिन में कि हमें रूहुल कुद्दस से झूठ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम रूल कुद्दस से झूठ बोलेंगे हम अपने आप को धोखा देंगे। सो बाइबल मुकद्दस में 3 गुनाह हैं जो खास रूल कुद्दस के खिलाफ ईमानदार करते हैं। रूल कुद्दस से झूठ बोलना, रूल कुद्दस को रंजीदा करना और रूल कुद्दस को बजाना। इसलिए हमें, अगर आपने रोजा रखा है, रूहुल कुद्दस ने आपकी हदायत की है, तो आज इस बात पर गौर करें कि आपका बोलना लोगों के लिए, आपके लिए मुख्तसर और बाबरकत हो। आपकी गुफ्तगू खुदा के साथ तो लंबी हो, लोगों के साथ इस बात पर जहन में रहे कि बातों बातों में खता ना हो। अगर आप आज रोज़ा की हालत में ठहरे हैं, अगर खुदा के पाक रूह ने आपकी रहनुमाई की है, क्योंकि बहुत दफ़ा हम रोज़े का असली मकसद खो देते हैं जब हम देखो देखी रोज़ा रखते हैं। बाइबल मुकद्दस में बहुत से रोज़ों का ज़िक्र है, ना कि सिर्फ हम अपने आप को, रोज़ा ऐसी हालत है जो बहुत दफ़ा दुख की हालत में रखा जाता था। मिसाल के तौर पर आज पहली मिसाल हम देखते हैं पुराने अहदनामा में से, सैमुअल नबी की किताब उसका दूसरा सैमुअल उसका पहला बाप। यहाँ पर खुदा का बंदा सौल बादशाह है, दाऊद वहाँ पर खिदमत गुजार है, वहाँ पर ये सारा काम हो रहा है। और सौल का जब हम वाक्या देखते हैं दूसरा सैमुअल पहला बाप उसकी 11वीं आय से, यहाँ पर वो जंग लड़ने के लिए लड़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर यूनतन जो सौल का बेटा है वो क्या है, मर गया है, वो तलवार से मर गया है, उसे तलवार से मौत आई है। तो क्या लिखा है 11वीं आयत, दूसरा सैमुअल पहला बाप उसकी 11 आयत, तब दाऊद ने अपने कपड़ों को पकड़कर उनको फाड़ डाला और उसके साथ सब आदमियों ने भी ऐसा ही किया। पुराने नामों में कपड़े फाड़ने का, अपने चोगे को फाड़ने का, या तो बंदा तब फाड़ता था जब कोई कुफर बकता था, जैसे यीशु मसीह के दौर में जब यीशु मसीह पर इल्ज़ाम झूठे लगाए गए तो काहिनों ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा ये कुफर बकता है, और या तब जब बंदा बहुत से दुख की हालत में होता था। याद होगा कि अय्यूब ने अपना सर मुंडवाया और अपना चोला फाड़ा और खाक पर बैठ गया। सो यहां पर दाऊद ने अपने कपड़ों को फाड़ डाला है और उसके सब साथी हैं जो उन्होंने भी ऐसा ही किया। और 12वीं आयत, और वो सौल और उसके बेटे यूनतन और खुदावंद के लोग और इसराइल के घरानों के लिए नोहा करने और रोने लगे और शाम तक रोजा रखा। तो ये हमें रोजे का यहां पर जिक्र मिलता है कि सुबह से लेकर शाम तक का रोजा, एक दिन का रोजा। तो यहां पर उन्होंने रोजा रखा है क्योंकि सौल के बेटे यूनतन की क्या हो चुकी है, वफात हो गई है, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। तो यहां पर हमें रोजे का जिक्र मिलता है मातम या गम या अफसुर्दगी की हालत में बैठना। रोजा मकसद का है, अगर आपने आज रोजा रखा है तो आप आपका मकसद जानते हैं, ये आपके और खुदा के दरमियान होना चाहिए, और उस मकसद को सिर्फ ना के याद रखें बल्कि उस मकसद के लिए दुआ करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि ईमानदार, आगे चलकर हम देखेंगे, मैं चाहता हूं कि इस 2 महीनों को, 1 महीने को हम इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं, और मेरी यही दुआ है कि जब हम बाइबल मुकद्दस में से रोज़े की तालीम पाए तो हमें सही तौर से रोज़ा रखने की पहचान हो जाए, ताकि खुदा के वो दिल का जो दिल की बात है कि क्या जैसा रोज़ा मैं चाहता हूँ तुम रखते हो, ना कि हम फर्जी रोज़े रखें कि सब रख रहे हैं, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए, बल्कि खाकसारी की हालत में खुदा के पाक रू को सुन के। सो हनन्याह और सफीरा की जिंदगी का वाक्या हमें यही सिखाता है कि हमें खुदावन खुदा के हजूर, उन्होंने जायदाद को अलहदा किया रोज़ा की हालत में, आप इस बात पर मुत्तफिक होते हैं कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा कुछ नहीं पीऊंगी। और बहुत दफा आगे चलकर देखेंगे तो आप जो वक्त खुदा के हजूर ठहराते हैं उस वक्त को बाबरकत जाने, ना के रोज़ा की हालत में हम पंजाबी या इंडियन या कोई और प्रोग्राम देखकर अपना वक्त पास करें, इसे रोज़ा नहीं कहते, और ना ही कि मेरा वज़न बढ़ चुका है इसलिए मैं रोज़ा रखूँगा ताकि वज़न कम हो जाए, और ना ही रोज़ा इसलिए कि मेरी सहेली ने रखा है मैं रखूंगी ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ क्या हों, कहें कि तूने रोज़ा रखा मैंने भी रोज़ा रखा है। सो रोज़ा खुदा के साथ आपका पोशीदा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट या कह सकते हैं कि रफाकत है। अगर हम बाइबल के रोज़ों को देखें, किसी को याद है आशर के कबीला में से एक फिनियल के घराने से बेवा थी। वो बेवा थी, 84 बरस की थी, हैकल में बैठी क्या करती थी? दुआओं और रोजों से वक्त गुजारती थी। उसकी जिंदगी ना तो यहूदी इतबार, जो यहूदी रिवाज था कि हफ्ते में 2 दिन रोजा, साल के 96 रोजे नहीं रखती थी, और ना ही साल बाद 40 रोजे रखती थी, बल्कि क्या लिखा है मेरे साथ हवाला देखें ताकि बाइबल मुकद्दस में हमें पता चले कि रोजे को किस तरह बयान किया गया है। लूका की इंजील उसका 2 बाप उसकी 26-36वीं आयत। यहां पर अभी अभी खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में लाया गया है। यीशु मसीह के 8 दिन पूरे हुए हैं, खतना किया गया है। उस शमौन बुजुर्ग ने, जिसकी आंखें भी खुलनी मुश्किल हैं, वो खुदावंद की हजूरी में खुदावंद यीशु मसीह को देखकर कहता है कि मैंने तेरी निजात को देख लिया। और आगे क्या लिखा है 36वीं आयत, और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फिनियोल की बेटी एक नबिया थी, नबुवत करने वाली नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कवारेपन के बाद 7 बरस एक शोहर के साथ गुजारे थे। हमें नहीं पता कि नहीं, हम कह सकते हैं 7 बरस शोहर के साथ गुजारने के बाद उसका शोहर फौत हो गया, वो बेवा हो गई, इसलिए वो बेवा हुई। वो 84 बरस से बेवा थी। कितने बरस से? 84 बरस से। बहुत उम्र रसीदा औरत है, बहुत दुआ गो औरत है। और क्या लिखा है, 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। यीशु मसीह ने हम में से किसी को भी हुक्म नहीं दिया था कि 40 रोजे रखें। यीशु मसीह ने यह हुक्म दिया था, जब तुम रोजा रखो, किसकी? रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में। सो 1 दिन का रोजा है, 2 दिन का रोजा है, 7 दिन का रोजा है, 40 दिन का रोजा है, एक रोजा 40 दिन का है, और हफ्ते के 2 रोजे हैं। और फिर इस बेवा की जिंदगी क्या है? हम सब के लिए खुली किताब है कि वो 84 बरस से खुदा की हजूरी में दिन और रात रोजों, ये नहीं लिखा कि एक रोजे से, रोजों जमा में रोजों और दुआओं से खुदा की इबादत करती थी। रोजा हकीकी तौर पर खुदा के और आपके दरमियान ये रिश्ता, ये बात, ये मुआहिदा है, ये अहद है कि अगर खुदा का पाक रू आपकी रहनुमाई कर रहा है तो रोजा रखें। क्योंकि बहुत दफा अगर एक रोजा रखता है तो दूसरा रोजा नहीं रखता, तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं? चढ़ाते हैं, चल नहीं चल, चल वे चल, तू नहीं रोजा रखे। रोजा इसे फर्जी हद तक मुकरर ना करें, इसे इख्तियारी और शख्सी होना चाहिए कि खुदा का पाक रू हमारे दिल में बात डाले कि हम रोजा रखें। आने वाले दिनों में हम रोजे की गहराई में उतरेंगे, जानेंगे। मेरी खिदमत है आप तक खुदा का कलाम पहुंचाना, आप पर ये मुनस्सर है कि एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। ये आप पर मुनस्सर है कि आप बाइबल मुकद्दस को तरजीह दें या फिर दुनियावी निज़ाम को। रोज़ा बहुत ही गहरा तल्लक है खुदा के साथ पोशीदा बात और खुदा के साथ कुर्बत में बढ़ने का एक, कह सकते हैं कि बहुत ही कीमती हथियार है। रोजा हमें खाकसारी, आगे चलकर देखेंगे जी कि रोजे में हमें क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ हम समझ सकते हैं। तो हमें हनन्याह और सफीरा की कहानी में इस बात से वाकिफियत होने, जो कुछ आपने खुदा के लिए अलहदा किया है उसे दें, जिसे हम ये असूल भी जान सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, जो कैसर का है वो कैसर को दो दिया जाए, जो खुदा का है वो खुदा को दिया जाए। तो अगर आप अपनी जिंदगी को खुदा के लिए लैदा करते हैं तो फिर उसी के लिए बसर करें। आपने अपना दिन मुकरर किया है खुदा के लिए तो उसी के लिए वो सारा वक्त होना चाहिए। आए हम खुदा के हुजूर झुकें।